आलिया ने आज रात जेल से भागने का प्लान बनाया था, जिसमें दिव्या का साथ एक आदमी दे रहा था। दिव्या की उस आदमी के साथ 11 बजे के आसपास मीटिंग थी, लेकिन सुबह नाश्ते के वक्त विक्रांत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इस वजह से दिव्या चाहकर भी घर से नहीं निकल पा रही थी। संजना माया के पास बैठी थी। माया ने मदद के लिए काफी लोगों को कॉल लगाया, लेकिन फिलहाल खुराना कंपनी की जो हालत चल रही थी उसके बाद कोई भी आगे नहीं आना चाहता था। आलिया को सजा हो जाने के बाद वैसे भी कोई उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। राहुल लॉयर से बात करने के लिए बाहर गया हुआ था। दिव्या भी बाहर निकलना चाहती थी, पर माया ने उसे देख लिया। वो गुस्से में उस पर तेज आवाज में बोली, तुम्हारा पति वहां बेवजह जेल के अंदर है और तुम्हें बाहर जाने की पड़ी है। क्या अभी भी तुम्हें शॉपिंग करनी है या किसी की किटी पार्टी अटेंड करनी है दिव्या? दिव्या का चेहरा दूसरी तरफ था। उसने आईज रोल की, फिर वो माया की तरफ पलटकर गुस्से में बोली, हाँ तो क्या करूं, जाकर आपके बेटे के साथ जेल में बैठ जाऊं? मुझे भी काम होते हैं। और किसने कहा कि वो बेवजह जेल में है? इस घर के सभी लोगों को अगर जेल में बिठा दिया जाए तो भी वो बेवजह नहीं होगा, क्योंकि सबने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई कांड करके रखा है। दिव्या ने इतने सालों में पहली बार माया से बदतमीजी से बात की थी। माया हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई, जबकि संजना ने माया की तरफ से कहा, दिव्या आंटी, आप किस तरह बात कर रही हैं? यहाँ सब परेशान हैं और आप दादी पर गुस्सा कर रही हैं, वो भी बस अंकल की वजह से। संजना बोल रही थी, तभी दिव्या ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ये लो, इसका फिर से अच्छी बहू बनने का ड्रामा शुरू हो गया। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। रुद्राक्ष तुमसे शादी नहीं करने वाला है। इन लोगों ने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। कल रुद्राक्ष यहाँ आया था और उनके मुंह पर तमाशा मार कर गया है कि वो अब उनसे ब्लैकमेल नहीं होने वाला है, चाहे ये कुछ भी क्यों ना कर ले। तुम फालतू में अपना टाइम खराब कर रही हो, जाकर अपने करियर पर ध्यान दो और कोई दूसरा अच्छा लड़का ढूंढो। दिव्या, माया ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, हम तुम्हारी बदतमीजी इस वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि विक्रांत यहाँ पर नहीं है। अगर वो होता और अपनी आंखों से सब कुछ देखता तो धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता। अब उसकी औकात नहीं रही है कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मैं खुद चली जाऊंगी उसे छोड़कर। वैसे भी ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा जो खुद कुछ नहीं कर सकता? पहले तो सब कुछ रुद्राक्ष को सौंप दिया और अब उसके जाने के बाद सब बिगाड़ कर रख दिया। रहिए आप अपने नकारा बेटे के साथ। इससे अच्छा मैंने रुद्राक्ष की शर्त मानकर विक्रांत से डिवोर्स ले लिया होता तो आज किसी जगह अच्छी लाइफ बिता रही होती, दिव्या ने कड़वे शब्दों में कहा और फिर वहां से चली गई। उसका ये रूप देखकर संजना और माया दोनों हैरान थीं। माया दिव्या को जाते हुए देख रही थी। उसे तसल्ली देने के लिए संजना ने माया को सोफे पर बिठाया और फिर पानी का ग्लास देते हुए कहा, दादी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। वैसे भी बुरा वक्त आता है, तभी अपनों और परायों की पहचान होती है। माया ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिमाना। अचानक ही माया के जहन में कुछ यादें ताज़ा हो गई थीं। लगभग 25 साल पहले खुराना फैमिली मुंबई में ही रहती थी और उनका बिजनेस भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस वक्त रुद्राक्ष 3 साल के आसपास था और मोक्ष 10 महीने के करीब। विक्रांत को बिजनेस में नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से गुस्से में अपनी आदत के मुताबिक वो सब पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। मोक्ष रुद्री की गोद में था। वो उसके पास आई और प्यार से बोली, आप चिंता मत कीजिए, डैड ने मेरे नाम जो शादी में शेयर्स दिए थे वो मैं बेच देती हूँ। आपका नुकसान पूरा हो जाएगा और आप बचे हुए पैसों से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर लीजिएगा। देखिए, मुझे ज्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर इतना दिमाग है कि किस वक्त क्या फैसला लेना है और मैं उन शेयर्स को बेचने का सोच ही रहा था। इसके लिए तुम्हें ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आप उन शेयर्स को बेच सकते हैं। मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी मॉम मेरे साथ है, विक्रांत ने रुद्री से काफी बेरुखी से कहा, जिसे सुनकर उसकी आंखें नम होने लगी। माया भी वहीं पर खड़ी थी। माया ने रुद्री की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, जो जब हमेशा गुड बुक्स में आने की कोशिश करती रहती है। इसे हर बार महान क्यों बनना होता है? शादी में वो शेयर्स तुम दोनों को गिफ्ट में मिले थे, लेकिन ऐसे जता रही है जैसे वो इसके हों। दूसरी बात, एक पत्नी अपने पति के साथ नहीं खड़ी रहेगी तो और कौन साथ देगा? ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं होती है रुद्री। सॉरी मम्मी जी, मैं बस इन्हें अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये डिमोटिवेट ना हो, रुद्री ने अपने आंसुओं को काबू करके कहा। विक्रांत ने अपनी आईज रोल की और जवाब में बोला, मैं ना तुम्हारा चेहरा देखकर ही डीमोटिवेट हो जाता हूँ, उसका क्या करूँ? मैं परेशान रहूँ तब कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो, खासकर अपने बच्चों को लेकर। ये क्या सिर्फ मेरे ही बच्चे हैं? रुद्री ने हैरानी से कहा। ओ माय गॉड मॉम, इसका फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। सबको पता होता है कि किसी अकेले के बच्चे नहीं होते हैं, फिर बार बार ये जताने की जरूरत नहीं होती है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मेरा इस वक्त दिमाग खराब है। मैं अपनी सेक्रेटरी दिव्या के पास जा रहा हूँ, वो कोई आइडिया नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारी तरह फालतू बकवास करके मेरा दिमाग खराब नहीं करेगी। मॉम प्लीज संभालिए आप इसे और समझाइए कि ये पतिव्रता पत्नी होने का दिखावा मेरे सामने ना करे, मुझे गुस्सा आता है, विक्रांत ने चिढ़कर कहा और फिर वहां से चला गया। रुद्री ने अपनी तरफ से शादी निभाने और उनका दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी विक्रांत और माया ने हमेशा उसकी इंसल्ट की और एक दिन विक्रांत दिव्या से शादी करके आ गया। रुद्री और विक्रांत का कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं था, फिर भी विक्रांत ने उसे घर से निकाल दिया था। इन सब में माया ने भी उसका साथ दिया था, लेकिन आज अचानक उसे रुद्री की याद आ गई, क्योंकि विक्रांत पर एक बार फिर से बुरा वक्त आया था। इतने अपमान सहने के बाद भी रुद्री उनके साथ खड़ी थी, जबकि आज दिव्या उन्हें ही दो बातें सुनकर वहां से चली गई थी। माया ने गहरी सांस ली और कहा, काश उस वक्त हमने विक्रांत को समझाया होता तो आज ये हालात ही नहीं होते। रुद्री इसी घर की बहू बनकर रहती और उसके साथ रुद्राक्ष भी कहीं नहीं जाता। अभी भी देर नहीं हुई है दादी, आप चाहो तो रुद्री आंटी को मनाकर वापस ला सकती हो। मैंने सुना है उनका और अंकल का डिवोर्स नहीं हुआ है। अंकल जाकर आंटी से माफी मांगेंगे तो रुद्राक्ष का दिल भी पिघल जाएगा और मोक्ष का भी। दोनों यहाँ आ जाएंगे तो फिर रुद्राक्ष को शादी के लिए मना ही लेंगे, संजना ने अपनी तरफ से सुझाव दिया। माया उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, राहुल मित्तल की बेटी होकर इतनी मासूम बातें कैसे कर सकती हो तुम? अब उन दोनों के बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त रुद्री के दिल में विक्रांत के लिए प्यार था, अब सिर्फ नफरत है। अगर आपके साथ में कुछ बुरा हो तो आपकी मासूमियत कहीं खो जाती है और बचती है तो सिर्फ नफरत, और वही हाल अब रुद्री का है। ना तो रुद्राक्ष और ना ही रुद्री अब विक्रांत को माफ करने वाले हैं। संजना ने उनकी बात पर हामी भरी। माया का कहना सही था, विक्रांत और माया ने रुद्री को वो घाव दिए थे जो कभी नहीं भरने वाले थे।
वहीं दूसरी तरफ दिव्या उस आदमी के पास पहुंच चुकी थी जो उसका काम करने वाला था। वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। दिव्या उसे इस वजह से जानती थी क्योंकि वो दोनों फैमिली फ्रेंड्स थे। उसका नाम अनुज दास गुप्ता था। दिव्या को देखते ही अनुज ने भौंयें उठाकर कहा, मैंने सुना है तुम्हारे पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कहो तो उसे भी बाहर निकलवा दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं अनुज, उल्टा मैं तो चाहती हूँ कि वो जेल में ही सड़े, वो किसी काम का नहीं रहा है। मैं बस आलिया और नव्यम की भलाई चाहती हूँ। नव्यम अपना काम अच्छे से कर रहा है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे बताओ कि आज रात का प्लान तुमने कैंसिल तो नहीं कर दिया? मुझे आलिया को जेल से बाहर निकलवाना है, दिव्या ने वहां बैठते हुए कहा। हाँ, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। मैंने आलिया को भी समझा दिया है कि क्या करना है, पर ये बात तुम याद रखना कि यहां से जाने के बाद गलती से भी सोशल मीडिया पर एक छोटी सी पोस्ट भी ना करे। बाकी आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी से थोड़ा बहुत चेहरा बदला जा सकता है, हो सके तो उसे सर्जरी करवाने के लिए मना लेना, अनुज ने जवाब दिया। वो कभी नहीं मानेगी, उसे अपने चेहरे से बहुत प्यार है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि वो इन सब से अब दूर रहे, दिव्या ने गहरी सांस लेकर कहा। ठीक है, फिर तुम तैयार रहना, रात के 3 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाना। वहीं से मैंने प्राइवेट प्लेन का अरेंजमेंट करवाया है, वो तुम्हें आलिया के साथ अपने डेस्टिनेशन तक छोड़ देगा, अनुज ने कहा। दिव्या ने उसकी बात पर हामी भरी। उन दोनों ने साथ में लंच किया और फिर दिव्या वहां से वापस घर आ गई थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब जेल में सभी लाइट्स बंद थी। अनुज के प्लान के मुताबिक आज आलिया पूरे दिन सबसे बहस और झगड़ा कर रही थी, तो सब उसे मारने का मौका देख रहे थे। वैसे भी जेल में यही होता था, अगर कोई किसी से पंगा लेता था तो रात के वक्त ही वो उससे बदला लेते थे। जेल के बाहर एक बहुत ही डिम लाइट जल रही थी। इसी बीच एक औरत आलिया के पास आई और उसके बाल पकड़कर खींचकर उसे उठाते हुए बोली, क्या रे, पूरे दिन से नाक में दम कर रखा है तूने? अभिनेत्री है तो तू बाहर की दुनिया में है, यहाँ हमारे सामने तेरी कोई औकात नहीं है। उसे देखकर आलिया बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन फिर भी वो शोर नहीं मचा सकती थी। उस औरत के साथ बाकी औरतें भी उसके पास आ गईं। एक ने आलिया के मुंह को पकड़ा और उसे दबाते हुए बोली, तुझे अपने जिस चेहरे पर घमंड है वो आधा तो बिगड़ गया है और आधा हम बिगाड़ देंगे, फिर बैठकर किसी कोने में रोती रहना और याद करती रहना अपने घर वालों को। इतना कहकर उसने आलिया का चेहरा छोड़ दिया था। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले आलिया जल्दी से उठी। दिव्या उसे मिलने के लिए रोज आती थी। इसी बीच में वो आलिया के लिए पेट्रोल और लाइटर लेकर आई थी ताकि वो आग लगा सके। आलिया ने दौड़कर उसे निकाला और जेल में पेट्रोल छिड़कने लगी। वो लोग हैरान रह गए कि आखिर ये क्या कर रही है। आलिया ने लाइटर निकाला और उसे जलाकर बोली, देखते हैं आज किसका चेहरा बिगड़ता है और कौन जिंदा रहता है। एक बात याद रखना, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम लोग होने वाली हो, बोलकर उसने दूसरे किन में मौजूद पानी अपने ऊपर छिड़क लिया। उन लोगों को लगा कि उसमें भी पेट्रोल होगा। आलिया ने लाइटर जलाई और वहां पर फेंक दिया था। इसी के साथ वहां आग लग गई और जेल में मौजूद बाकी कैदी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर अनुज का एक कांस्टेबल वहां पहरेदारी दे रहा था। उसने जल्दी से जेल को खोल दिया और आलिया को बाहर भगाने का इशारा किया। आग लगने की वजह से सब जगह धुआं हो रखा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी ने आलिया को निकालने के बाद फिर से जेल का दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें बाहर नहीं निकाला। प्लान के मुताबिक आलिया आजाद हो चुकी थी और उस आदमी के साथ जेल से बाहर की तरफ निकल रही थी। इतने दिनों बाद खुली हवा में सांस लेकर आलिया को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तो क्या आलिया भाग जाएगी? ऐसा लग रहा है आज कहानी का आखिरी दिन नहीं बल्कि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक बार तो दिल किया कि आराम से लिखती हूँ, फिर सोचा कि अगर कॉम्पिटिशन का टैग दिया ही है तो कहानी को आज ही खत्म कर देती हूँ।